arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मा मणि। बिंदुसार एवं अशोक।
शासनकाल 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। वह 298 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। पुराणों के अनुसार उसने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया। उसने अमित्रघात की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार ने चंद्रगुप्त मौर्य से उत्तराधिकार में प्राप्त विशाल साम्राज्य को पूर्ण रूप से अक्षुण्य बनाए रखा। उसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। पहली बार के तक्षशिला विद्रोह दमन के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा। तक्षशिला के द्वितीय विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने कुमार सुसीम को भेजा। बिंदुसार ने अन्य देशों के साथ शांति एवं मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। यूनान के तत्कालीन शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। बिंदुसार विद्वानों और दार्शनिकों का सम्मान करता था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस को एक यूनानी दार्शनिक भेजने के लिए लिखा था। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वी पूर्व में हुई। अशोक, शासनकाल 273 ईस्वी पूर्व से 223 ईस्वी पूर्व। मौर्य सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अशोक शासक बना। अशोक अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, धर्म संरक्षण, हृदय की उदारता, प्रजा के प्रति उदारता, कल्याणकारी कार्यों, अपने आदर्शों के कारण महान सम्राट माना जाता है। निस्संदेह अशोक की महानता उसके विस्तृत साम्राज्य विस्तार में नहीं, बल्कि उसके चरित्र, सिद्धांतों एवं आदर्शों के कारण मानी जाती है। दीपवंश और महावंश में बिंदुसार की 16 रानियों एवं 101 पुत्रों का उल्लेख किया गया है। अशोकावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों का वध किया था, लेकिन यह बात किंवदंती पर आधारित है, इसलिए गलत भी हो सकती है। बिंदुसार के समस्त पुत्रों में अशोक सबसे योग्य था। अशोक को सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों के साथ 4 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व हुआ। अशोक को उसके लेखों में प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय कहा गया है। अशोक की कलिंग विजय। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात ईसा पूर्व 261 में कलिंग में युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में मौर्य शासक अशोक की विजय हुई। कलिंग और मगध के बीच हुए युद्ध में 1 लाख व्यक्ति मारे गए, 1.5 लाख व्यक्ति बंदी बनाए गए और कई लाख लोगों की घावों, भय और उपचार प्राप्त न होने के कारण मृत्यु हो गई। कलिंग युद्ध की भीषणता को देखकर अशोक का दृष्टिकोण बदल गया। उसने अब शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया। डॉक्टर हेमचंद्र राव चौधरी के शब्दों में, मगध का सम्राट बनने के बाद अशोक का यह प्रथम और आखिरी युद्ध था। कलिंग युद्ध के परिणाम। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने शस्त्र के स्थान पर धम्म विजय का निश्चय किया। उसके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहला, दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय। अशोक ने कलिंग युद्ध की विनाश लीला को देखने के उपरांत यह निश्चय किया कि वह भविष्य में कभी तलवार नहीं उठाएगा। वह अब प्रजा को धर्म विजय के लिए प्रेरित करेगा। अशोक के शिलालेखों पर लिखा हुआ है कि कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने धर्म को मुख्य समझा और उसी के प्रचार में लग गया। दूसरा, बौद्ध धर्म की ओर आकर्षण। अशोक की अहिंसात्मक नीति ने उसे बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया। यह परिवर्तन युद्ध के बिना असंभव था। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रंथों से संबंधित स्थानों की यात्रा की और प्रचार प्रसार के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। तीसरा, लोक कल्याणकारी कार्य। अशोक ने घोषणा करवाई कि आवेदक किसी भी समय मुझसे मिल सकता है। दंड विधान की कठोरता को कम किया। अशोक ने राजधानी में पशुओं की हत्या बंद करवा दी। दरबार में भोग विलास, मदिरा, मांस सेवन आदि पर प्रतिबंध लगा दिए। चौथा, विश्व इतिहास की निर्णायक घटना। निस्संदेह कलिंग युद्ध न केवल भारत वरन विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। डॉक्टर रे चौधरी के शब्दों में, कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन में एक नया मोड़ उपस्थित कर दिया। इस परिवर्तन के परिणाम भारतीय इतिहास और संपूर्ण पूर्वी संसार के इतिहास पर इस प्रकार पड़े जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। अशोक एवं बौद्ध धर्म। अशोक प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। अभिलेखों के आधार पर यह कहा जाता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 90 वर्ष बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। श्री राधा कुमुद मुखर्जी के शब्दों में, कलिंग युद्ध की विभीषिकाओं ने अशोक के चरित्र में आमूल परिवर्तन ला दिए। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने संबंधी साक्ष्य। साहित्यिक स्रोत। पहला, बौद्ध साहित्य। दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान आदि बौद्ध ग्रंथ अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने की पर्याप्त जानकारी देते हैं। दूसरा, गांगी संहिता। तीसरा, चीनी यात्रियों का विवरण। फाहयान, इत्सिंग, वेनसांग आदि चीनी यात्रियों ने अशोक को बौद्ध कहा है। पुरातात्विक स्रोत। अशोक के अभिलेखों में उसके बौद्ध जीवन संबंधी जानकारी मिलती है। पहला, प्रथम शिलालेख। इसमें अशोक के बौद्ध संघ के साथ एक वर्ष जीवन यापन करने का वर्णन है। दूसरा, रुमिंदेई अभिलेख। इसमें गौतम बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी गांव की यात्रा अशोक द्वारा किए जाने का उल्लेख है। तीसरा, निगलीव स्तंभ लेख। इसमें अशोक ने कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया और पूजा की। चौथा, भाब्रू अभिलेख। इसमें अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया है। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कार्य। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कार्य किए। पहला कार्य, धम्म विजय। अशोक ने भीषण कलिंग युद्ध के बाद यह निश्चित किया कि वह कभी तलवार नहीं उठाएगा। उसके राज्य में भेरी घोष के स्थान पर अब धम्म घोष होगा। अब वह धम्म विजय के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। दूसरा, धम्म यात्रा। राजा प्राचीन समय में विहार यात्रा करते थे, परंतु अशोक ने धम्म यात्राएं प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य बौद्ध भिक्षु, ब्राह्मण आदि के दर्शन प्राप्त करना, प्रजा से मिलना, उनसे धर्म संबंधी वार्तालाप करना, उनके प्रश्नों के उत्तर देना आदि था। तीसरा, धम्म श्रावण। सातवें स्तंभ लेख से स्पष्ट होता है कि अशोक प्रजा को विभिन्न समय पर धार्मिक संदेश देता था। मौर्य सम्राट द्वारा स्वयं धार्मिक संदेश देने से प्रजा पर प्रभाव पड़ता रहा होगा और बौद्ध धर्म की तीव्र गति से प्रगति हुई। चौथा, आत्मनिरीक्षण। अशोक का कहना था कि प्रत्येक मनुष्य को अपना आत्मनिरीक्षण एवं आत्मपरीक्षा करनी चाहिए और चिंतन करके अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। पांचवा, अहिंसा। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत अहिंसा का अशोक ने पूर्णतः पालन किया और जनता के समक्ष उसने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया। उसने पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगा दी। छठवां, धर्म अनुशासन की स्थापना। तीसरे शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने राजकों, प्रादेशिकों को आज्ञा दी कि वे प्रति पांचवें वर्ष राज्य में घूमे और प्रजा को धर्म उपदेश दें। सातवां, धर्म महामात्र की नियुक्ति। अपने पांचवें शिलालेख में अशोक ने लिखा है, पहले धर्म महामात्र नियुक्त न थे, किंतु अभिषेक के 13वें वर्ष मैंने धर्म महामात्र नियुक्त किए। वे सब धर्मों के लिए नियुक्त हैं। 8वां, बौद्ध संगीति का आयोजन। बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें देश के प्रकांड विद्वानों बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। यह बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। इस आयोजन से प्रजा को बौद्ध धर्म के संबंध में व्यापक ज्ञान प्राप्त हुआ। 9वां, स्तूपों एवं विहारों का निर्माण। सम्राट अशोक ने गौतम के जीवन से संबंधित स्थानों जैसे लुम्बिनी, गया, सारनाथ आदि में स्तंभलेख, स्तूपों एवं विहारों का निर्माण कराया। 10वां, अभिलेख। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं अपने आदेशों को अशोक ने शिलालेख एवं स्तंभलेख के माध्यम से प्रजा तक पहुंचाया। 11वां, परोपकारी कार्य। प्रजा के कल्याण के लिए अशोक ने महत्वपूर्ण परोपकारी कार्य करवाए। 7वें स्तंभलेख में वह कहता है कि मैंने वटवृक्ष लगवाए जो पशुओं और मनुष्यों को छाया सुख दे, आम्रकुंज लगवाए, कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई और जलाशयों की स्थापना करवाई। 12वां, विदेशों में धर्म प्रचार। मौर्य सम्राट अशोक ने धम्म विजय हेतु न केवल भारत वरन विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे। उसने श्रीलंका में धर्म प्रचार हेतु अपनी पुत्री संघमित्रा एवं पुत्र महेंद्र को भेजा। अशोक का धम्म। अशोक का धम्म क्या है? यह एक जटिल प्रश्न है, क्योंकि अशोक के अभिलेखों में धम्म शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, इस पर विद्वानों में मतभेद है। अशोक ने अपने दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं से ही पूछा है कि कियम चु धम्मे, यानी धम्म क्या है। इस वाक्य का उत्तर देते हुए वह स्वयं कहता है कि अपासिनवे बहुथाने दया दाने सचे सोचये, अर्थात धम्म है अपासिनवे यानी बुरे कार्यों से बचना, बहुथाने यानी बहुकल्याण, दया यानी करुणा, दाने यानी उदारता, सचे यानी सत्यता, सोचये यानी पवित्रता। अशोक का धम्म दो भागों में विभक्त था, पहला धम्म का व्यावहारिक रूप और दूसरा धम्म का निषेधात्मक रूप। व्यावहारिक रूप के बारे में अशोक का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अस्तित्ववान जीवों को कष्ट न पहुंचाना, जीव जंतु की हत्या न करना, सभी प्राणियों के प्रति आदर भाव रखना, माता पिता की सेवा करना, मित्रों संबंधियों परिचितों ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार करना आदि। अब निषेधात्मक रूप की बात। अशोक के विचार में धम्म के मार्ग में अनेक बाधाएं आ जाती हैं जो व्यक्ति को धम्म उद्देश्य से दूर कर देती हैं। ऐसे दुर्गुण इस प्रकार हैं, चंडीय यानी उग्रता, निटली यानी निष्ठुरता, क्रोध, मान, ईर्ष्या। इन विकारों को अशोक ने एक शब्द द्वारा व्यक्त किया है, वह शब्द है असिनव यानी पाप। इन पापों से प्रत्येक व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, इन विकारों से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। धम्म का आचार मूलक तत्व। अशोक ने धर्मों के कर्मकांड का विरोध किया और धम्म के आचार मूलक तत्व को प्रधानता प्रदान की। धार्मिक सहिष्णुता। जो मनुष्य अपने धर्म का सम्मान करता है, उसे पूजता है और अन्य धर्मों की बुराई करता है, जो कि गलत कार्य है, अपने इस कार्य से वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने धर्म की हानि करता है। प्रत्येक मनुष्य को वाक संयम के साथ जीवन यापन करना चाहिए। 12वें शिलालेख में कहा गया है, देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा सब धर्मों अथवा संप्रदायों, साधुओं और गृहस्थों को दान तथा अन्य पूजा से सम्मानित करता है। धम्म मंगल। अशोक के अनुसार मनुष्य को सदैव धम्म मंगल करना चाहिए। धम्म मंगल का अर्थ है गुरुजनों का सम्मान, समस्त जीवों के प्रति अहिंसा, दान और वेतन भोगी सेवकों से सही व्यवहार। धम्म समस्त प्राणी मात्र के लिए। अशोक ने अपने शासनकाल में अनेक लोक कल्याणकारी कार्य किए, छायादार वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई और औषधालय बनवाए। वह पहला शासक था जिसने पशु चिकित्सालय की स्थापना करवाई थी। और अब निष्कर्ष देखें। निस्संदेह अशोक का धम्म वर्तमान समय में हमारा मार्गदर्शन करता है, विशेषकर उसका धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत। डॉक्टर विमल चंद पांडेय के शब्दों में, अशोक का धम्म मानव जगत के लिए ही नहीं वरन समस्त प्राणी मात्र के लिए था। सर्व प्राणियों के प्रति अहिंसा उसके धम्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। अशोक का मूल्यांकन एवं अशोक की महानता के कारण। अशोक विश्व के महानतम सम्राटों में से एक था। अशोक को विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। डॉक्टर मजूमदार के शब्दों में, अशोक भारत के इतिहास के सबसे महान व्यक्तियों में से एक था। उसने धम्म विजय को अपने साम्राज्य का आधार बनाया। और अब यदि अशोक की महानता के कारणों को देखें, पहला, आदर्शवादी सम्राट। अशोक की शासन व्यवस्था संकुचित विचारधारा से ऊपर उठकर आदर्शवादिता पर आधारित थी। उसने अपने राज्य की नींव सत्य, अहिंसा, प्रेम एवं उदारता के आधार पर रखी। अशोक ने प्रत्येक क्षेत्र जैसे धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अपने महान आदर्शों का अनुसरण किया। दूसरा, महान शासक। अशोक मौर्य काल का महानतम शासक था। उसने कलिंग युद्ध के उपरांत उत्पन्न विभीषिका के दृश्यों को देखकर तलवार न उठाने का निश्चय किया तथा मानव कल्याण के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। विश्व इतिहास में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिला कि एक अत्यधिक शक्तिशाली सम्राट ने युद्ध का परित्याग करके विश्व कल्याण की भावना के आधार पर शासन किया हो। तीसरा, धार्मिक सहिष्णुता। अशोक की सर्वप्रथम विशेषता उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। यद्यपि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु उसने सदैव सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखी। उसके शासनकाल में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार धर्म का अनुसरण करने की छूट थी। अशोक की उदार धार्मिक नीति ने उसे विश्व के महानतम सम्राटों की श्रेणी में ला दिया। चौथा, उदार एवं लोक हितकारी शासक। अशोक अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानता था। वह सदैव प्रजा की सेवा के लिए तत्पर रहता था। अशोक ने लिखा है, सभी जन यानी सारी प्रजा मेरी संतान है, इसलिए इस लोक और परलोक दोनों में उनके लिए सभी प्रकार के सुख समृद्धि के उपभोग की कामना करता हूँ। अशोक ने स्थान स्थान पर फलदार वृक्ष लगवाए, सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, धर्मशालाओं का निर्माण कराया। अशोक के शासनकाल में कोई भी व्यक्ति कभी भी राजा से मिल सकता था। अशोक ने दंड विधान की कठोरता को भी कम किया। अशोक के लिए प्रजा का कल्याण ही सर्वोपरि था। पांचवा, राष्ट्रीय एकीकरण का कार्य। भारत का राजनीतिक एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रयासों का परिणाम था, परंतु इस विशाल साम्राज्य को अक्षुण्य बनाए रखना अशोक की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। संपूर्ण भारत को एक प्रजावत्सल आदर्शवादी सम्राट मिला जिसने एक जैसी कानून व्यवस्था, एक ही भाषा पाली और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्य करके इस देश का राष्ट्रीय एकीकरण किया, अपने साम्राज्य और प्रजा में एक रूपता लाने का प्रयत्न किया। छठवां, महान विजेता। कश्मीर एवं कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने युद्ध न करने का निश्चय किया। यद्यपि मौर्य सम्राट के पास एक विशाल सेना उपलब्ध थी, अशोक ने आदर्शवादी एवं कर्तव्यनिष्ठ शासक के रूप में अपने को प्रजा के सामने प्रस्तुत किया। उसने धम्म विजय को अपनाया। अशोक ने अहिंसा एवं शांति के माध्यम से अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा, जो कि विश्व इतिहास में एक उदाहरण है। उसका साम्राज्य कश्मीर से मैसूर तक और अरब सागर से पूर्वी बंगाल तक विस्तृत था। सातवां, बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के रूप में स्थापित करना। अशोक ने एक महान धर्म प्रचारक की भांति कार्य करते हुए बौद्ध धर्म को, जो कि स्थानीय स्तर पर था, एक विश्व धर्म के रूप में स्थापित किया। स्वयं अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए व्यापक रूप में कार्य किया। धर्म के व्यापक रूप का उदाहरण अशोक ने प्रजा के सामने स्वयं रखा। उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जिससे वे प्रजा को सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित कर सकें। अशोक ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। डॉक्टर मजुमदार ने सत्य ही लिखा है कि अशोक एक मार्गदर्शक के रूप में प्रकट हुआ। यह मार्गदर्शक बौद्ध धर्म को एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर, एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक देश से दूसरे देश तथा एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ले गया। अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। अशोक को एक महान उदारवादी, धर्म सहिष्णु, आदर्शवादी और एक कर्तव्यनिष्ठ शासक के रूप में इतिहास में जाना जाता है। H.G. Wells के शब्दों में, प्रत्येक युग और प्रत्येक राष्ट्र इस प्रकार के सम्राट को उत्पन्न नहीं कर सकता। अशोक अब भी विश्व के इतिहास में अद्वितीय है।
arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।